अध्याय 28 अपठित गद पद अर्थ और परिभाषा। अपठित अवतरण का अर्थ उस अवतरण से है जिसे विद्यार्थी पहले कभी नहीं पढ़े हों। अपठित करने के नियम। गद और पद के प्रश्न पत्रों में अपठित अवतरणों को सर्वप्रथम पूर्ण रूपेण समझने का प्रयत्न करना चाहिए। अवतरण में यदि कुछ ऐसे शब्द हों जिनका अर्थ आपको ना ज्ञात हो तो घबराना नहीं चाहिए। दिए हुए अवतरण को 3-4 बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बार बार पढ़ने से अवतरण का भाव और सार का ज्ञान हो जाता है। फिर भी उसका भावार्थ समझ ना आए तो उसे बार बार पढ़ के उसके सारांश का ज्ञान करना चाहिए। यदि अवतरण का सारांश समझ में आएगा तो विद्यार्थी सुगमतापूर्वक प्रश्नों के उत्तर भी दे सकेगा। अपठित लेखन के समय ध्यान देने की बातें। जब अवतरण का सार ज्ञात हो जाए तब मुख्य बिंदुओं को बाएं पृष्ठ पर लिख लेना चाहिए। फिर इन बिंदुओं को अपने वाक्यों में कम से कम शब्दों में लिखकर सार तैयार कर लेना चाहिए। प्राय अवतरण का सारांश अवतरण का एक तिहाई होना चाहिए। अवतरण में से किए गए प्रश्नों के उत्तर उसमें कहीं ना कहीं अवश्य दिए रहते हैं, अतः उन उत्तरों को पढ़कर समझना चाहिए। फिर उन उत्तरों को अपने शब्दों में लिखना चाहिए। अपठित पद्यांश का सार लेखन थोड़े ही शब्दों में करना चाहिए। पद्य के केंद्रीय विचार अथवा भाव को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जिन रेखाकृत भागों का अर्थ पूछा जाता है उन भागों के शब्दों को अच्छी तरह से समझकर तथा उनके पूर्व और पश्चात में आए हुए वाक्यों को पढ़कर उनकी व्याख्या अपने शब्दों में करनी चाहिए। यदि विद्यार्थी ने सम्यक रूपेण अवतरण के आशय को समझ लिया तो उसे अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। शीर्षक अधिकतम 5 शब्दों में होना चाहिए। यदि विद्यार्थी अपठित अवतरण के उत्तरों को पहले रफ कर ले फिर अंत में काट छांट कर फेयर करे तो अशुद्धियों की संख्या कम हो जाएगी। परीक्षा में प्राय विद्यार्थी अपठित अवतरण को अंत में करता है, तब उसके पास कम समय रहता है और वह घबराहट में उसे पूरी तरह समझ नहीं पाता, अतः अपठित अवतरण को बीच में ही करना चाहिए। अपठित गद्य। उदाहरण के रूप में कुछ अपठित गद्यांश दिए गए हैं। उपयुक्त शीर्षक देते हुए निम्नलिखित अवतरणों का भावार्थ अपनी भाषा में लिखिए। उदारता का अभिप्राय केवल निसंकोच भाव से किसी को धन दे डालना ही नहीं वरन दूसरों के प्रति उदार भाव रखना भी है। उदार पुरुष सदा दूसरों के विचारों का आदर करता है और समाज में सेवक भाव से रहता है। यह ना समझो कि केवल धन से उदारता हो सकती है। सच्ची उदारता इस बात से में है कि मनुष्य को मनुष्य समझा जाए। धन की उदारता के साथ सबसे बड़ी एक और उदारता की आवश्यकता है, वह यह है कि उपकृत के प्रति किसी प्रकार का एहसान न जताया जाए। एहसान दिखाना उपकृत को नीचा दिखाना है। एहसान दिखाकर उपकार करना अनुपकार है। शीर्षक उदारता। भावार्थ। व्यक्ति यदि दूसरे को धन देता है तो केवल धन से वह उदार नहीं कहलाएगा। उदारता में कुछ अन्य बातों का भी होना आवश्यक है, जैसे दूसरों के प्रति दया भाव रखना, दूसरों के विचार का आदर करना और समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करना। वस्तुतः उदारता तो यह है कि मनुष्य दूसरे मनुष्य को भी समझे और अब उपकृत यह ना बताए कि उसने उसके प्रति कोई उपकार किया है। एहसान जताकर उपकार करना उपकार नहीं, मनुष्य को मनुष्य समझना ही सच्ची उदारता है। आज समता का जो सिद्धांत प्रचलित हो रहा है उसका आधार प्रेम नहीं संपत्ति और प्रभुत्व है। वैज्ञानिकों के ज्ञान और नीतियों की नीति दोनों का लक्ष्य इसी संपत्ति और प्रभुत्व की वृद्धि है। उसी के कारण जीवन में संघर्ष और देश में युद्ध है। यंत्रों की वृद्धि हो रहा है, उद्योगों की उन्नति हो रही है और व्यवसायों का विस्तार हो रहा है, पर उन्हीं के साथ राष्ट्रों में संघर्ष भी हो बढ़ रहा है और देश के भीतर अशांति भी फैल रही है। यदि सचमुच में हमसे समता और बंधुत्व का भाव आ जाए तो यही संसार स्वर्ग हो जाए। उक्त अवतरण का भावार्थ अपनी भाषा में लिखिए। कालांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। भावार्थ। वास्तव में आज समता का प्रचार आपसी प्रेम को बढ़ाने के लिए नहीं हो रहा, बल्कि प्रभुता को समाप्त करने के लिए हो रहा है। आज मनुष्य विज्ञान, नीति, यंत्र, उद्योगों तथा व्यवसायों की वृद्धि के द्वारा इन्हीं संपत्ति और प्रभुता को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें विभिन्न देशों में सर्वत्र ही संघर्ष में वृद्धि होने के कारण अशांति फैली जा रही है। यदि किसी भी प्रकार मनुष्यों में समता और भाईचारे की भावनाएं आ जाएंगी तो संसार सब प्रकार से सुखी हो सकेगा। रेखाकृत अंशों की व्याख्या। समता का जो सिद्धांत, संसार के संपूर्ण मनुष्य एक समान है। जाति, वर्ण, देश, धन आदि के कारण उनमें कोई अंतर नहीं, अतः सभी मनुष्यों को दूसरों के स्वजन मानकर समझकर प्रेम से रहना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इन भावनाओं को समता के सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। विशेष समता के सिद्धांत का प्रचलन हिंदुस्तान में अति प्राचीन काल से है। आत्म सर्वभूतेषु विद्या विनय संपूर्ण ब्राह्मणे गर्वी हसिति न सानी चैक्सवाक चह पंडिता है समदर्शन आदि में इस समता का सिद्धांत वर्णन है। प्राचीन काल में इसका प्रचलन धर्म क्षेत्र में ही था, किंतु आजकल यह अर्थ राजनीति और समाज के क्षेत्र में अपना विस्तार पा रहा है। हाँ, सांप्रदायिक समाजवाद और साम्यवाद समता के इसी सिद्धांत को समान रूप से रेखाकृत करते हैं। संसार स्वर्ग हो जाए। पुराणों के अनुसार स्वर्ग उस लोक को कहते हैं जहाँ लोक और शोक का नामो निशान नहीं, ना वहाँ बुढ़ापा है और ना रोग। संसार दुख भय शोक की क्रीड़ा स्थली है, अतः दुख भय शोक आदि से रहित संसार की भावना को प्रकट करने के लिए परस्तुत अवतरण संसार को स्वर्ग बनाने की परिकल्पना की गई है। विशेष स्वर्ग ऐसे लोक का नाम है जो इस संसार से ऊपर की दिशा में स्थित है। यह संभव हो सकता है कि संसार में स्वर्ग के सुख आ जाएं, पर यह संसार किसी प्रकार स्वर्ग नहीं बनता, क्योंकि यहाँ ऐसी किसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के लिए आवश्यकता नहीं जो तत्व परिवर्तन के समान संसार का परिवर्तन कर सके, अथवा जिस प्रकार कुंभकार गीली मिट्टी के खिलौनों को बिगाड़ कर मनचाहा खिलौना बना देता है, उसी प्रकार संसार को बिगाड़ कर स्वर्ग नहीं बनाया जा सकता। अतः यहाँ वाच्यार्थ के सिद्ध न होने के लक्षणा शक्ति के द्वारा स्वर्ग अपना लाक्षणिक अर्थ प्रकट कर रहा है, और इनके द्वारा उत्पन्न समृद्धि तथा सुखी देश का प्रकट करना प्रयोजन है। अतः यहाँ प्रयोजन वाली लक्षण शक्ति है। अपठित पद, केंद्र विचार अथवा भाव। पद का स्वरूप निम्नलिखित तत्वों पर आधारित होता है। पहला संगठन तत्व, दूसरा भाषा शैली, तीसरा संकल्पन, चौथा ध्वन आत्मकता, पांचवा आश्चर्य मिश्रण। पद का सार लिखने से पूर्व इन उसके समस्त स्वरूपों का संगोपाय अध्ययन करना चाहिए। महत्वपूर्ण जानकारी। पद की गीतात्मकता किन संकेतों के साथ प्रयुक्त की है तथा उन बिंबों का उद्देश्य क्या है। विविध बंदों में वर्णित तथ्यों का भाव पद के सामान्य अर्थ में किन अर्थों से जुड़ा है। पद की उठती संगीत धारा पद के अर्थ की पहचान करती है। प्राय दुखांत गीतों का संगीत प्रवाहमान और विगलित ध्वनि से अपलवित रहता है। इन ध्वनियों को पहचानना नितांत आवश्यक है, क्योंकि इनमें कोई महत्वपूर्ण संकेत छुपे रहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ अपठित गाद्यांश दिए गए हैं। निम्नलिखित पाद्यांश को एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। निम्नलिखित पाद्यांश को भाव सरल भाषा में लिखिए। बन जाता सिद्धांत प्रथम फिर पुष्टि हुआ करती है। बुद्धि उसी क्षण को सबले सदा भरा करती है। मन जब निश्चिंत सा कर लेता कोई मत है अपना। बुद्धि दैव बल से प्रमाण का स्थितः निखरता सपना। पवन की वही हिलकोर उठाता वही तर्कता जल में। वही प्रतिध्वनि अंतर्मय की छा जाती नवतल में। सदा समर्थन करती उसको तर्क साथ की पीढ़ी। ठीक यही है सत्य यही है उन्नति सुख की सीढ़ी। और सत्य यह है कि एक शब्द तू कितना गहन हुआ। मेघा के कीड़ा पंचर का पाला हुआ सुआ है। सब बातों में खोज तुम्हारी रटसी लगी हुई है। किंतु स्पर्श से तर्क करो उसे बनता छुई मुई है। शीर्षक सत्य और तर्क। भावार्थ। इस संसार में पहले सिद्धांत बनते हैं, फिर लोग उसको जीवन में आचरण करके उन्हें पुष्टि प्रदान करते हैं। जब हमारा मन किसी सिद्धांत को निश्चित कर लेता है, तब बुद्धि उसी की पुष्टि करती है और वह स्थिर हो जाती है। प्राचीन सिद्धांत का समर्थन नवीन शास्त्र करते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि सुख सत्य का मार्ग बताते हैं। सत्य एक गंभीर शब्द है। यह बुद्धि और कीड़ा रूपी पिंजरे में बंद तोते के समान है। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज करना चाहता है, किंतु यह सत्य तर्क जाल में पड़कर छुई मुई के समान मुरझा जाती है। सत्य को तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता। एक और पाद्यांश, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, मिल जाता हमको स्वर्ग द्वार। नभ में मयंक लगता रुचि कर, सरोवर में विकसित कमल सुधर। उपवन में है गुलाब सुंदर, पर माँ की गोद में इनसे बढ़कर तेरी छवि है अपार। झलमल झलमल करती शबनम, मोती से होती चमक न कम। बिजली के दीप बड़े चमचम, पर ये सब लगते हैं धुंधले तेरे धातों की धूती निहार। शीर्षक, शिशु सौंदर्य। भावार्थ, उपयुक्त पाद्यांश में केवल शिशु के सौंदर्य का उल्लेख करते हुए कहता है कि हे शिशु, तेरे सौंदर्य को देखकर हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानो हम स्वर्ग का सुख प्राप्त हो रहा है। आकाश में चंद्रमा सुंदर लगता है, तालाब में खिला हुआ कमल सुंदर लगता है, बगीचे में गुलाब का फूल सुंदर लगता है, परंतु माता की गोद में पड़े हुए तुम इन सबसे अधिक सुंदर लगते हो। इसी प्रकार पौधों की पत्तियों पर, फूलों की पंखुड़ियों पर झिलमिलाती और नृत्य करती हुई औस की बूंद मोती के समान चमकती हुई लगती है और रात को विद्युत माला की चमचमाती हुई दिखाई देती है। पर शिशु के दांतों की सुंदरता के आगे ये वस्तुएं फीकी लगती हैं।